पृष्ठ संख्या 350 अध्याय 21 योग दर्शन। योग की महत्ता की मान्यता आस्तिक तथा नास्तिक दोनों ही दर्शन स्वीकार करते हैं। वेद, उपनिषद, आरण्यक, गीता आदि में योग की महनीयता का वर्णन है। त्रिपिटक को जैन अंगों, हेमचंद्र के योग शास्त्र नामक ग्रंथ, तंत्र साहित्य तथा नाथ संप्रदाय के ग्रंथों में इसका विवेचन मिलता है। योग के कई प्रकार का ज्ञान गीता से मिलता है। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अन्यत्र हठ योग और राजयोग का भी उल्लेख है, पर इसमें एक ही चरम लक्ष्य है कि मोक्ष की प्राप्ति पर बल दिया गया है। पर इसका दार्शनिक रूप पतंजलि ने सर्वप्रथम दिया और इस पर योग सूत्र नामक ग्रंथ लिखा। इस पर व्यास का योग भाष्य तथा वाचस्पति मिश्र की टीका तत्व वैशारदी विशिष्ट उल्लेखनीय है। योग का अर्थ है मिलन। इसमें योग के द्वारा जीवात्मा से परमात्मा के मिलन की बात की गई है। गीता में इसे दुख संयोग का वियोग, सांख्य के विचार में दुख की आत्यंतिक निवृत्ति तथा पतंजलि योग सूत्र में योगस चित्त वृत्ति निरोधा अर्थात योग द्वारा चित्त वृत्ति का रोकना बताया गया है। किंतु सांख्य का विचार इसमें सुख के अभाव का बोधक है यह मान्य नहीं है, क्योंकि जब दुख से योगी विचलित नहीं होगा तो उसे आंतरिक सुख की परम अनुभूति होगी, इसलिए यह आंतरिक सुख प्रदाता भी है। गीता में इसको समत्व, चित्त निरोध और ब्रह्म भाव से युक्त कहा गया है। यहाँ समन्वय से अभिप्राय है ज्ञान, कर्म और योग का समत्व। योग सांख्य का प्रयोग युग्म के रूप में किया जाता है। स्पष्ट है कि दोनों में बहुत कुछ साम्य है। दोनों जीवन का मूल लक्ष्य मोक्ष को मानते हैं। इसमें अंतर है कि सांख्य जहाँ केवल सैद्धांतिक पक्ष पर बल देता है, वहाँ योग इसके साथ व्यवहारिक पक्ष को भी पुष्ट मानता है। सांख्य और योग के तत्वों में एकता है। अंतर है कि सांख्य के 25 तत्वों में योग एक ईश्वर तत्व और जोड़कर 26 तत्व स्वीकार करता है। योग और सांख्य के प्रमाण शास्त्र भी एक ही हैं। दोनों ही विकासवादी सिद्धांत को मानते हैं। ये समस्त विश्व की को अचेतन प्रकृति से निर्मित मानते हैं। दोनों ही सत्कार्यवाद की महत्ता स्वीकार करते हैं। अंतर है कि सांख्य ईश्वर की चर्चा नहीं करता, पर योग ईश्वर को योग का एक विषय मानकर चर्चा करता है। दोनों अविवेक को बंधन का कारण मानते हैं तथा मोक्ष का कारण विवेक को। पर योग दर्शन मुक्ति के लिए विवेक के साथ योग साधना पर भी बल देता है। एक चित्त वित्तियां। पतंजलि ने योग की परिभाषित पतंजलि ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है योगस चित्त वित्ति निरोध अर्थात योग चित्त वित्तियों का निरोध है। इसमें विरोध का अर्थ स्पष्ट है रोकना, पर दो शब्द है चित्त और वित्तियां। इसमें चित्त का अर्थ है अंतःकरण। अंतःकरण नाम से बुद्धि, अहंकार और मन तीनों मिला होता है। इसमें बुद्धि के अंतर्गत ही अहंकार और मन होता है। इसकी जननी प्रकृति है, जिससे यही प्रथम उत्पन्न है। यहाँ आत्मा से अलग है। इससे आत्मा जहाँ चेतन है, वहीं यह अचेतन और अत्यंत सूक्ष्म है। जड़ होकर भी यह आत्मा से प्रकाशित होकर उसके प्रकाश में अपना प्रतिबिंब देखकर उसी को वास्तविक मान स्वयं को भी और अत्यंत सूक्ष्म है। जड़ होकर भी यह आत्मा से प्रकाशित होकर उसके प्रकाश से अपना प्रतिबिंब देखकर उसी को वास्तविक मान स्वयं को भी वास्तविक एक मान बैठता है, अपने को चेतन मान लेता है। इस प्रकार निराकार आत्मा जो सर्वव्यापी है, उसमें प्रतिबिंबित जीव रूप में सीमित चैतन्य लगने लगता है। यही पुरुष का बंधन है। अतः चैतन्य की प्रतीति से ही चैतन्य है। जब चैतन्य आत्मा ज्ञान द्वारा अपना प्रकाश और प्रतिबिंब चेतन से हटा लेता है अथवा चैतन्य के प्रकाश का निरोध हो जाता है, तो चित्त अपनी जननी प्रकृति में समाहित हो जाती है। यह निरोध समाधि में होता है। जब पुरुष अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर विशुद्ध चैतन्य की स्थिति में प्रकाशित होता है, यही मोक्ष है। इसका उदाहरण अग्नि में तप्त लौह पिंड से दे सकते हैं। जिसको तपाने पर पिंड अग्नि का पुंज प्रतीत होता है और अग्नि के ठंडा होने पर वह पुनः लौह पिंड दिखने लगता है। वृत्ति का अर्थ है विषय का आकार ग्रहण करना। चित्त जब इंद्रियों द्वारा बाहरी या भीतरी विषयों के संपर्क में उस वस्तु का आकार ग्रहण कर लेता है, तो इसका ज्ञान आत्मा के ज्ञान से प्रकाशित होने पर होता है। इस प्रकार विषयों के ज्ञान का होने वाला क्रम वृत्ति कहलाती है। वृत्तियां क्षीण होकर संस्कार में गर्भस्थ होती हैं। इनका क्षय नहीं होता, पर संस्कार के पुष्ट होने पर वे पुनः अपना रूप धारण कर लेती हैं। इस प्रकार संस्कार और वृत्तियों की परस्पर उत्पत्ति अनवरत क्रम से चलती है। संस्कार वृत्तियां क्षीण होने पर सूक्ष्म रूप संस्कार रूप में रही हैं। इस प्रकार वृत्तियों से संस्कार बनते हैं। उचित अवसर पर स्थूल रूप में वे संस्कार पुनः वृत्तियों का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार वृत्तियों से संस्कार और संस्कार से वृत्तियों का क्रम चलता रहता है। इसको समझाने के लिए वृक्ष और जड़ की उपमा दी गई है। जैसे वृक्ष के काट देने पर पृथ्वी के नीचे अदृश्य रूप में विद्यमान उस वृक्ष की जड़ पड़ी होती है, यह अनुकूल परिस्थिति में वर्षा का पानी पाकर पुनः वृक्ष बन जाता है। इसमें वृक्ष स्थूल और जड़ सूक्ष्म है। इसके संबंध चित्त वृत्ति निरोध से यह है कि वृक्ष के साथ जब जड़ का भी अंत हो जाएगा तो वृक्ष नहीं निकलेगा, स्थूल और जड़ सूक्ष्म है। यही पूर्ण योग सिद्धि है कि वृत्तियों का बाह्य आकार आंतरिक स्रोत के साथ समाप्त हो जाए, तब न संस्कार रहेगा न वृत्तियां ही रहेंगी। चित्त वृत्तियों के प्रकार, इनके भिन्न 5 प्रकार हैं। एक प्रमाण सत्य का ज्ञान है, यह 3 प्रकार से प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द। 2 विपर्यय मिथ्या ज्ञान को कहते हैं, जिससे सही वस्तु की जगह गलत वस्तु का ज्ञान होता है, जैसे रस्सी को रात में दूर से देखकर सर्प का ज्ञान करना, पर समीप आने पर रस्सी देखना, इसमें संशय और भ्रम भी समाहित है। 3 विकल्प शब्द से ज्ञान उत्पन्न होना, किंतु किस सत्य वस्तु से यह शून्य ज्ञान होता है, जैसे घोड़े की सींग होना, इसे सुनकर लगता है कि घोड़े की सींग होती है, पर यह असत्य है। 4 निद्रा, इसमें जागृत और स्वप्न वृत्तियों का अभाव रहता है, इसमें तमस की अधिकता होती है, जैसे सोकर उठने पर कहना कि बड़ा भयंकर स्वप्न था, यहाँ सोने में देखे गए स्वप्न का भान होता है। 5 स्मृति, अनुभव से प्राप्त वस्तुओं को ठीक ठीक याद रखना स्मृति है, यह संस्कार जन्य ज्ञान है। इन्हीं 5 में चित्त के समस्त क्रिया व्यापारों को समाहित किया जा सकता है। क्लेश, बुद्धि जब आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होने पर अपने प्रतिबिंब को देख उसे सही मान बैठता है, तो वह जीव रूप में प्रतीत होने से दुखों के जाल में फंसकर जन्म मरण के चक्र में प्रवर्तित होने लगता है, इसे क्लेश कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, अविद्या, मरना, अप्रवृत्तता, दुख तथा सुख, पवित्रता। 2 अस्मिता, नितांत भिन्न पुरुष और चित्त को एक मानना, यद्यपि यह मिथ्या ज्ञान है। 3 राग, अपने पर अभिमान करना, अपने को कर्ता मानना, भोक्ता मानना आदि। 4 द्वेष, क्रोध और हिंसा का भाव, ईर्ष्या, विरोध आदि। 5 अभिनिवेश, जीवन के प्रति लगाव और मृत्यु का भय। इनसे छुटकारा पाने का एक ही मार्ग है, चित्त वृत्तियों का विरोध, जो भोग से ही संभव है। चित्त की भूमियां अवस्थाएं, चित्त की निम्न अवस्थाएं बताई गई हैं। 1 क्षिप्त, इसमें चित्त रजोगुण के प्रभाव में अधिक सक्रिय तथा चंचल होने से एक वस्तु पर केंद्रित नहीं रहता, इंद्रिय और मन संयमित नहीं रहते। 2 मूढ़, तमोगुण के प्रभाव में निद्रा आलस्य से चित्त निष्क्रिय रहता है। 3 विक्षिप्तावस्था, रजोगुण से कुछ प्रभावित होने से चित्त अस्थिर रहता है। 4 एकाग्रता, सतोगुण की प्रधानता से चित्त देर तक एक विषय पर लगा रहता है। 5 निरुद्धावस्था, संपूर्ण वृत्तियों का निरोध होकर स्थायी रूप से ध्यान एक विषय पर केंद्रित हो जाता है, यह धीरे धीरे होता है, यह मोक्ष की अवस्था है, इसमें संस्कार अविद्या में समा जाते हैं। 2 अष्टांग योग, योग साधना में एकाग्रता के लिए शरीर, इंद्रिय और चित्त की शुद्धि आवश्यक है। इसके लिए 8 मार्ग बताए गए हैं, जो निम्न हैं। 1 यम, इसका अर्थ है संयम। 5 प्रकार के संयम होते हैं। संयम में मन, वचन और कर्म से ही कोई काम किया जाता है, 5 प्रकार में ये समाहित रहते हैं। क अहिंसा, प्राणी हिंसा न करना। ख सत्य, कर्म और वचन से सत्य का पालन। ग अस्तेय, चोरी न करना। घ ब्रह्मचर्य, यौन पर संयम रखना। ग अपरिग्रह, भोग वाले पदार्थों का संग्रह न करना। 2 नियम, इसके भी 5 प्रकार होते हैं। क शौच, बाहरी और आंतरिक अशुद्धता को दूर करना। ख संतोष, आवश्यकता से अधिक वस्तु की इच्छा न करना। ग तप, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, दुख सुख तथा कठिन व्रतों का को सहन करना। घ स्वाध्याय मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन और ओंकार का जप। ग ईश्वर परिधान ईश्वर का ध्यान और स्मरण। तीन आसन चित्त को स्थिरता और शरीर को सुख देने वाला बैठने का यह प्रकार है। कमलासन शीर्षासन सिद्धासन आदि अनेक आसन हैं, इनसे एकाग्रता आती है। चार प्राणायाम प्राण वायु तथा श्वास प्रश्वास का संयम श्वास निश्वास के क्रिया से मन चंचल रहता है। जब श्वसन की क्रिया रोकी जाती है तब प्राणायाम करते हैं तो यह एकाग्रता होती है। पांच प्रत्याहार प्रति उल्टा आहार वृत्ति अर्थात इंद्रियों की वृत्ति उल्टी हो जाती है अर्थात बाहर से हटकर अंतर्मुखी हो जाती है, इससे इंद्रियां पूर्ण नियंत्रण में आ जाती हैं। छह धारणा देश बंधस चित्तस्य धारणा किसी एक स्थान देश केंद्र में चित्त को एकाग्र करके वहां इष्ट देव का ध्यान करना। सात ध्यान तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम ध्येय वस्तु का ज्ञान एकाकार रूप में एक विशेष केंद्र पर निरंतर प्रवाहित करना ही ध्यान है। आठ समाधि सम्यगाधीयते एकाग्र कियते विक्षेपान परिहृत्य मनो यत्र स समाधि इसमें ध्यानकर्ता ध्येय वस्तु के साथ एकाकार हो जाता है। अंतिम तीन धारण ध्यान और समाधि जो अंतरक साधन है ये ही वास्तव में सामूहिक रूप से संयम है। पहले के पांच तो बहिरंग साधन है वे इन अंतरंग साधनों के सहायक हैं। तीन समाधि समाधि योग का प्राणाधार है, इसकी व्याख्या ऊपर की जा चुकी है। समाधि दो प्रकार की होती है, एक संप्रज्ञात समाधि इसमें चित्त को समाहित करने के लिए ध्येय वस्तु का ज्ञान बना रहता है तथा ध्याता और ध्येय होते हैं पर दोनों का अस्तित्व बना रहता है। दो असंप्रज्ञात समाधि इसमें ध्येय का अलग ज्ञान नहीं रहता, ध्याता और ध्येय का एकाकार हो जाता है। यह स्थिति चित्त निरोध की है जहाँ चित्त सर्वथा निरुद्ध हो जाता है, यही दशा कैवल्य की है। इसमें चित्तवृत्तियों के संस्कार का भी विरोध होता है, इसमें क्लेशों का अंत होता है। संप्रज्ञात समाधि के चार भेद हैं। एक सवितर्क इसमें स्थूल वस्तु का पर ध्यान लगाया जाता है जैसे मूर्ति पर। सविचार इसमें सूक्ष्म विषय पर ध्यान लगाया जाता है जैसे तन्मात्रा। तीन सानंद इसमें इंद्रियों की आनंददायक अनुभूति के कारण यह सानंद है, यहाँ ध्यान की विषय इंद्रियां हैं। चार सस्मित अहंकार को अस्मिता कहते हैं, इसमें अहंकार की भावना की जाती है। असंप्रज्ञात समाधि के दो प्रकार हैं, एक भव प्रत्यय यदि वृत्ति का निरोध हो जाए पर चित्त अज्ञानतावश अविद्या में लीन हो जाए तो यह चित्त का लय प्रकृति में होना अज्ञानावस्था के कारण जड़ समाधि का भव प्रत्यय कहलाता है, यह वास्तव में समाधि न होकर अज्ञानावस्था है। दो उपाय प्रत्यय शुद्ध ज्ञान को उपाय कहते हैं, ज्ञान के साधक है श्रद्धा शक्ति स्मृति और समाधि, इसमें शुद्ध ज्ञान का उदय होता है, इसे अविद्या का नाश होने से संस्कार और वृत्तियों का निरोध हो जाता है। इसमें दृष्टा विशुद्ध चैतन्य में स्वयं समाहित हो जाता है जैसे अग्नि सबको जलाकर स्वयं शांत हो जाती है, यही योग का चरम लक्ष्य है तथा कैवल्य है क्योंकि तप मात्र केवल ही रह जाता है। सिद्धियां ये योग को अंतिम लक्ष्य आत्मदर्शन मोक्ष में बाधक होती है। जब योगी समाधिस्थ होता है तो उसके साधना के कारण उसे सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ये आठ है। ये योग के लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती हैं क्योंकि योगी को लुभाकर उसको विचलित करती हैं। ये है एक अड़िमा अणु की तरह छोटा एवं अदृश्य हो जाना। दो लघिमा हल्का होकर धरती से ऊपर उठ जाना। तीन महिमा ऊंचा और भारी होना। चार प्राप्ति किसी इच्छा की पूर्ति करना। पांच प्राकाम्य इच्छा शक्ति का बढ़ना। छह वशित्व वशीकरण। सात ईशित्व अधिकार प्राप्त की सिद्धि। आठ यथा काम वशाइता जो भी संकल्प योगी का हो उसका पूर्ण होना। चार ईश्वर योग में ईश्वर सांख्य कहा जाता है क्योंकि सांख्य के 25 तत्वों में जिनमें ईश्वर की गणना नहीं की गई है इसने ईश्वर को भी अलग से जोड़ दिया है। इसमें ईश्वर जीव से भिन्न है क्योंकि जीव जहाँ जन्म मरण के बंधन में बंधा है, कर्म फल के द्वारा उसे सुख दुख भोगना पड़ता है, वहीं ईश्वर बंधन रहित पूर्ण मुक्त है। यह आत्मा से अलग है क्योंकि आत्मा शरीर में बन जाती है। शरीर के नाश होने पर आत्मा मुक्त होता है किंतु फिर दूसरे शरीर में जाकर बनता है, अतः इसे मुक्त शाश्वत नहीं कहा जा सकता। जबकि ईश्वर परम मुक्त है, वह मन से भी भिन्न है क्योंकि सदा बंधन में रहता है, अतः वह दुखों से दूर, कर्म एवं फल से रहित, संस्कार से अप्रभावित, नित्य मुक्त है। वह अखंड ज्ञानवान ऐश्वर्य युक्त है। पातंजलि ने इसी से इसे विशिष्ट पुरुष कहा है। यही अनादि अनंत और पूर्ण ब्रह्म है। यह गुणातीत सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। यह एक है। इसी मान्यता के कारण योग को एकेश्वरवादी दर्शन कहा जाता है। यह सृष्टिकर्ता या सृष्टिहर्ता नहीं माना गया है क्योंकि यह सांख्य की तरह सृष्टि को प्रकृति का विकास मानता है, पर पुरुष और प्रकृति के संयोग से हुए इस विकास के लिए एक तीसरा व्यक्ति योग में ईश्वर है। इसे दयालु कृपालु वेद का रचनाकार धर्मधुरी अंतर्यामी ऋषियों का गुरु है। ओम इसका प्रतीक माना गया है। ईश्वर के प्रति चित्त को दृढ़ता से भक्ति पूर्वक लगाने से ईश्वर की सिद्धि को माना गया है। ईश्वर प्रणिधानात् वा, प्रणिधान का अर्थ है भक्ति पूर्वक दृढ़ता से चित्त लगाना। ईश्वर के अस्तित्व को मानने के लिए निम्न तर्क योग सूत्र में दिए गए हैं। एक, ईश्वर का वर्णन आत्म ग्रंथों वेद उपनिषद स्मृतियों तथा पुराणों में हुआ है, इससे ईश्वर की सिद्धि स्थिति सिद्ध है। दो, परिमाण में बड़ी और छोटी मात्राओं में भेद किया जाता है। उसी सिद्धांत में ईश्वर सृष्टि में सबसे महान है, इसमें अनंत ज्ञान है। तीन, पुरुष और प्रकृति के संयोग से सृष्टि के उद्भव में संयोग का प्रेरक ईश्वर को ही माना जा सकता है, जो इन सबसे बड़ा है। चार, योगी प्राणिधान समाधि ईश्वर पर ही लगाता है। इसी से ईश्वर इस मार्ग में आने वाले सभी आपदाओं और निरोधों को दूर करता है। समीक्षा, सांख्य की अधिकांश मान्यताओं को योग में यथावत स्वीकार किया गया है, पर कुछ में परिवर्तन भी करता है। जैसे सांख्य जहाँ निरीश्वर है, वहीं वह सेश्वर है। इसमें सांख्य की प्रकृति पुरुष के संयोग को स्वीकार करने के साथ ही संयोगकर्ता ईश्वर की बात की गई है, जिसका उल्लेख सांख्य में नहीं किया गया है। योग भारतीय दर्शनों में ईश्वर प्राप्ति का एक विशेष और सफल साधन है। यहाँ योगाभ्यास मोक्ष की प्राप्ति के लिए किए जाने का उल्लेख है। साथ ही वैज्ञानिक आधार पर योगाभ्यास के अष्टांगिक मार्गों का उल्लेख कर इसे अत्यंत सरल बना दिया है। इसी से अष्टांगिक मार्ग की इसकी अनमोल देन माना जाता है। योग में शक्तियों की प्राप्ति का होना तथा उनकी ओर योगी का आकृष्ट न होना इसके संयम पर बल देता है। योग का फल है इंद्रिय संयम। यदि संयम है तो साधना सफल है और ईश्वर या मोक्ष प्राप्त होगा ही, पर यहाँ ईश्वर को केवल समाधि योग तक सीमित रखा गया है। कर्म या कर्म विपाक से दूर रखकर उसके अधिकार को परिच्छिन्न कम किया गया है। वह न किसी को दंड दे सकता है न पुरस्कार।